जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा
Krishna, 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 Krish
Prabhupada Srila Prabhupada Hari Go Hari Go Hari Go Hari Go
हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में, और आज हम 8वें स्कंद के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। और ये श्लोक सामने बोर्ड पर लिखा है, आप मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं।
सविधास्यति ते कामा सविधास्यति ते कामा हरिर्दीनानुकम्पनः हरिर्दीनानुकम्पनः अमोघा भगवद्भक्ति अमोघा भगवद्भक्ति नेतरेति मतिर्मम सविधास्यति ते कामा हरिर्दीनानुकम्पनः अमोघा भगवद्भक्ति नेतरेति मतिर्मम सविधास्यति ते कामा हरिर्दीनानुकम्पनः अमोघा भगवद्भक्ति नेतरेति मतिर्मम।
Yeah.
शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की सह वह वासुदेव विधास्यति निश्चय ही पूरा करेगा ते तुम्हारी कामना इच्छाएं हरि ही भगवान दीन दुखियों पर अनुकंपनः अत्यंत कृपालु अमोघा अच्युत भगवत भक्ति भगवान की भक्ति ना नहीं इतरा भगवत भक्ति के अतिरिक्त कुछ भी इति इस प्रकार मति ही अभिमत मम मेरा। अनुवाद हमारे साथ साथ रहेगा। दीनों पर अत्यंत दयालु भगवान तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे क्योंकि उनकी भक्ति अच्युत है। भक्ति के अतिरिक्त अन्य सारी विधियां व्यर्थ हैं, ऐसा मेरा मत है। तात्पर्य कृपया सुनेगा। मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं, अकाम मोक्ष काम तथा सर्व काम। जो इस जगत से मोक्ष पाना चाहता है वे मोक्ष काम है, जो इस जगत का पूरा पूरा भोग करना चाहता है वे सर्व काम कहलाता है। किंतु जिसने सारी इच्छाएं पहले ही पूरी कर ली हैं और अब जिसे कोई भौतिक इच्छा नहीं सताती वह अकाम कहलाता है। भक्त को कोई इच्छा नहीं होती। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। वह शुद्ध है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है। मोक्ष कामी पर ब्रह्म में विलीन होकर मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, अतएव ब्रह्म में विलीन होने की इस इच्छा के कारण वह अभी शुद्ध नहीं हुआ होता। और जहां मोक्ष कामी ही अशुद्ध हो वहां कर्मियों के विषय में क्या कहा जाए जिन्हें अन्य इच्छाओं की पूर्ति करनी होती है। फिर भी शास्त्रों का कथन है, अकामः सर्वकामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषं परम। चाहे कोई सब कुछ चाहता हो या कुछ भी ना चाहता हो, या वह भगवान में तदाकर होने की इच्छा करता हो, वे बुद्धिमान तभी है यदि वह दिव्य प्रेम भक्ति द्वारा भगवान कृष्ण की पूजा करता है। कश्यप मुनि ने देखा कि उनकी पत्नी अदिति ने में अपने पुत्रों के भौतिक कल्याण के लिए कुछ इच्छाएं हैं, फिर भी उन्होंने उन्हें भगवान की भक्ति करने की सलाह दी। दूसरे शब्दों में चाहे कोई कर्मी हो या ज्ञानी अथवा योगी हो या भक्त, उसे सदा वासुदेव के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए जिससे उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो सके। कृष्ण दीन अनुकंपन है, वे सब पर परम दयालु रहते हैं, अतएव यदि कोई अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी करना चाहता है तो कृष्ण उसकी सहायता करते हैं। निस्संदेह यदि भक्त अत्यंत निष्ठावान होता है तो भगवान कभी कभी उस पर विशेष कृपा करके उसकी भौतिक इच्छाएं पूरी करने से इनकार कर देते हैं और सीधे उसे अनन्य शुद्ध भक्ति का आशीर्वाद देते हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण कहे आमी आमा भजे मांगे विषय सुख अमृत छाड़ी विष मांगे एई बड़ा मूर्ख आमी विज्ञे एई मूर्खे विषय केन दीबा स्वचरणामृत दिया विषय बुलाईबा। कृष्ण कहते हैं यदि कोई मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहकर साथ ही भौतिक भोग का ऐश्वर्य चाहता है तो वह बहुत बड़ा मूर्ख है। वह निस्संदेह ऐसे पुरुष के तुल्य है जो विष पान करने के लिए अमृत छोड़ देता है। क्योंकि मैं अत्यंत बुद्धिमान हूं अतः मैं इस मूर्ख को भौतिक संपन्नता क्यों दूं? मैं तो उसे अपने चरण कमलों की शरण का अमृत ग्रहण करने तथा मोह माया भौतिक भोग को भूलने के लिए प्रेरित करूंगा। यदि भक्त किसी भौतिक इच्छा के साथ साथ कृष्ण के चरण कमलों में निष्ठापूर्वक अपने मन को लगाना चाहता है तो कृष्ण उसे सीधे शुद्ध भक्ति प्रदान कर सकते हैं और उसकी सारी भौतिक इच्छाएं इच्छाओं तथा संपत्ति को हर सकते हैं। यह भक्तों के प्रति भगवान का विशेष अनुग्रह होता है। अन्यथा यदि कोई कृष्ण की भक्ति करता है किंतु फिर भी भौतिक इच्छाएं पूरी करना चाहता है तो वह ध्रुव महाराज के ही समान सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकता है, किंतु इसमें कुछ समय लग सकता है। तथापि यदि कोई निष्ठावान भक्त मात्र कृष्ण के चरण कमलों को चाहता है तो कृष्ण उसे शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं।
ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरूपेश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवत हम किस कक्षा में। और जैसा कि अभी हम आठवें स्कंध पे चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पर अदिति का संवाद है, इसमें हम यहाँ पर देखते हैं कि अदिति जो है उसको कोई चैन नहीं मिल रहा है। उसका रीजन क्या है कि उसका मन बहुत चिंतित है। उसके जो बच्चे हैं वो सफर कर रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। और कैसे दुख भोग रहे हैं? बिकॉज दे आर होमलेस, उनके पास अपना घर नहीं है ना, एक रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं, छुप रहे हैं, डर रहे हैं, है ना। उनका जितना भी यश था, मान था उनका, वो सब जा चुका है। सारा ऑपुलेंस जो भौतिक ऐश्वर्य वो खो चुके हैं और पूरे उनके जीवन में हर कदम पर अब वो खतरे भोग रहे हैं ना, किसी तरीके से अपनी जान को बचा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो उनकी भक्ति है वो अपनी भक्ति को भी खो चुकी है। तो श्रीमद् भागवतम में दरअसल सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा, ये जो फैमिली है अपने आप में बहुत यूनिक फैमिली है, ऐसा परिवार देखने के लिए कहीं मिलता नहीं है। जस्ट इमेजिन करके देखिए, एक ही परिवार है, उसमें सारे दैत्य भी रहते हैं, दानव भी रहते हैं और सारे देवता भी रहते हैं, है ना, और सबकी पत्नियां भी हैं, है ना। फिर एक पत्नी को प्रसन्न करना बहुत कठिन है, फिर तीन पत्नियां और तीनों के बच्चे अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हो और हर माता को लगता है कि मेरा बच्चा सबसे अच्छा है। ऐसा नहीं कि कभी दीदी को फील हुआ होगा कि हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप कितने गंदे हैं, है ना, कितने दुष्ट हैं। उनको तो लगता होगा मेरे प्यारे से बच्चे हैं, कोमल से, है ना, जिन्होंने कभी किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, कभी किसी के बारे में गलत सोचा भी नहीं है, ना, हमेशा धर्म का पालन करते हैं। आए हमें धर्म का ही उपदेश दिया है भागवत में हिरण्यकश्यप ने, तो उनको लगता था मेरे बच्चे बहुत मासूम से हैं, तो यही यही फीलिंग थी उनके अंदर। तो ये परिवार ये अपने आप में बहुत यूनिक परिवार है, और सबसे जो इसमें दलेरी का काम कर रहे हैं वो है कश्यप मुनि। किसी भी मैनेजर को पता होगा कि अगर उसको मैनेजमेंट करनी पड़े और दो भक्त अगर एक ही चीज के लिए डिमांड कर रहे हो तो बड़ा मुश्किल होता है उसे डील करना। वो कहता मुझे चाहिए, वो कहता मुझे चाहिए, और दोनों के जो क्योंकि गोल तो दोनों का क्लियर होता है मुझे चाहिए, तो उनके लॉजिक्स जो होते हैं उस पर बिल्कुल डिपेंडेंट होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लॉजिक उस पर सेट करके आते हैं कि क्यों इसकी आवश्यकता मुझे है। तो कश्यप मुनि हालांकि वो भगवान की सेवा कर रहे हैं इस प्रकार से इन दोनों परिवारों को बड़ा करके, तो हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं भागवतम के छठे स्कंध में, अभी आठवें स्कंध में अदिति अदिति कश्यप मुनि के पास गई हैं और अपना दुख प्रकट कर रही हैं। और दुख प्रकट करने का भी बहुत अलग सा तरीका है ना, ऐसा नहीं कि पति आया और रोना शुरू कर दिया हाय मेरा क्या होगा है ना मुझे बचा लो, नहीं, शांति, वेट करो उस मोमेंट तक कि पति मुझे क्या हुआ है, हुआ क्या आखिर, बोल तो सही, कुछ तो बोल, क्या हुआ है। तो उसमें जो टेम्परेचर ना बढ़ता रहता है, वो टेम्परेचर, वो पति का टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, वो इस इंटेंस लेवल तक चले आता है कि वो पत्नी को खुश करने के लिए कुछ भी कर देगा। तो वो जो साइलेंस है ना, वो साइलेंस सब कुछ बोल रही होती है अपने आप में, पर फिर भी कश्यप जो अदिति थी उसने वो साइलेंस मेंटेन करके रखा। ये तो साइलेंस कुछ भी नहीं है, अगर आप भागवतम का छठा स्कंद पढ़ेंगे तो जो उसमें दिति ने जो साइलेंस मेंटेन किया वो तो और भी खतरनाक था। तो इसी प्रकार से इस परिवार को पालना कश्यप मुनि, हालांकि बहुत सारी बहुत कश्यप मुनि को बहुत ही चतुराई इसमें दिखानी पड़ी, किस प्रकार से उन्होंने दीति से डीलिंग किया और किस प्रकार से यहाँ पर अदिति से डीलिंग कर रहे हो, पर उनका लक्ष्य जो था कश्यप मुनि का बिल्कुल क्लियर था कि मुझे चाहे वो दीति हो या अदिति, उसे किसी ना किसी प्रकार से भगवान की सेवा में जोड़ना है। और यही एक भक्त का, यही एक अच्छे मैनेजर का, यही एक अच्छे लीडर का तरीका है डीलिंग करने का। हो सकता है कभी कभी कोई स्टूडेंट, कोई व्यक्ति, कोई भक्त उनके पास आए और उसके कई अल्टीरियर मोटिव्स हो, कई उसकी इच्छाएं ऐसी हो जो ठीक नहीं है, पर एक भक्त, एक लीडर इस प्रकार से डीलिंग करता है कि उस भक्त की उन इच्छाओं को भी किस प्रकार से मोल्ड करके उसे भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में लगा सके। और वही डीलिंग यहां पर कश्यप मुनि कर रहे हैं अदिति के साथ, उनको पयोव्रत, पयोवय व्रत का पालन करवा के। तो हालांकि शुद्ध भक्ति जो प्योर डिवोशनल सर्विस बताई गई है, प्योर डिवोशनल सर्विस में जैसे एक श्लोक यहां पर जो बताया गया है, दो एग्जांपल, ये अदिति के साथ डीलिंग कर रहे कश्यप मुनि और उन्होंने बात बोली, यही सेम उदाहरण कश्यप मुनि ने छठे स्कंद में दिति को भी बोला है। और ये दोनों उदाहरण उस श्लोक में परपट में प्रभुपाद लिख रहे हैं, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम ब्रह्मा, और ये और साथ में ध्रुव महाराज का उदाहरण, ये दोनों उदाहरण उन दोनों तात्पर्य में है। पर श्री प्रभुपाद उसके साथ साथ छठे स्कंद में ये बता रहे हैं कि दरअसल ये शुद्ध भक्ति नहीं है। यहां पर भी श्री प्रभुपाद बता रहे हैं सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, शुद्ध भक्ति जो है वो, शुद्ध भक्ति का मतलब नो पर्सनल डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपनी खुद की कोई भी भौतिक इच्छा ना हो, भौतिक इच्छा भी और किसी प्रकार की मुक्ति की इच्छा भी नहीं, किसी प्रकार की कोई अपनी भौतिक इच्छा ना रखना। तो दरअसल भक्तों के जीवन में जब डिवोटीज इन श्लोक को सुनते हैं तो हालांकि उनको बहुत एंकरेजमेंट मिलता है इन श्लोक को सुनने से, श्री श्री राधा राधिकरमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री गौनताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। हालांकि जब भक्त लोग इस श्लोक को सुनते हैं, अकाम सर्व काम व मोक्ष काम, चाहे आपकी कोई कामना ना हो, चाहे आपकी सारी कामनाएं हो या आपकी मुक्ति की कामना हो, तो भक्तों, ये भक्तों को बहुत उत्साह देने वाला होता है कि कोई बात नहीं, एटलीस्ट मैं ठीक पाथ पर तो हूं, मैं सही रास्ते पर तो हूं। अब जिस प्रकार से यहां पर कश्यप मुनि अदिति के साथ डीलिंग कर रहे हैं, यही सेम ट्रिक नारद मुनि ने ध्रुव महाराज के साथ भी की थी, तभी श्रील प्रभुपाद इस उदाहरण को दोनों जगह बता रहे हैं कि नारद, ध्रुव महाराज की इच्छा क्या थी, ध्रुव महाराज की ये डिजायर थी कि उनको अपने पिता से भी, प्रपिता से भी बड़ा राज्य मिले। और नारद मुनि सब कुछ जानते हैं और नारद मुनि को यह पता था कि मुझे इस बच्चे को किसी ना किसी प्रकार से भगवान की सेवा में जोड़ना है। तो नारद मुनि ने क्या किया, उनको डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस दिया है ना, एक कठिन रूप भक्ति करने का, भगवान की सेवा करने का, जिससे वो शुद्ध हो पाएंगे, है ना। जैसे भगवान की डीटीज को बनाना, डीटीज में मेडिटेट करना, भगवान के लिम्स पर, भगवान के नाम पर मेडिटेट करना, इस प्रकार से डिफिकल्ट प्रोसेस नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को बताया, क्योंकि शास्त्र में बताया गया ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्या भयंतरः शुचिः, कि चाहे कोई भी, चाहे वो पवित्र हो या अपवित्र, पर अगर कोई भगवान का स्मरण करता है, यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्या भयंतरः शुचिः, उसकी बाहर से भी और अंदर से भी क्या होता है, वो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है। तो नारद मुनि ने बेसिकली ध्रुव महाराज के साथ क्या किया था, ट्रिक किया था उसको। नारद मुनि को पता था इसकी बहुत भौतिक इच्छाएं हैं, पर फिर भी नारद मुनि ने क्या किया, भक्ति के माध्यम से उसको सेवा में लगाकर उसकी सारी भौतिक इच्छाओं को शुद्ध कर दिया। और उसके बाद जब ध्रुव महाराज के सामने भगवान प्रकट हुए, भगवान ने पूछा कि मांगिए आपको क्या चाहिए, तो ध्रुव महाराज के पास कुछ वर्ड्स नहीं थे। ध्रुव महाराज ने सिर्फ यही बोला कि मैं कुछ कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था, मुझे नहीं पता था मुझे हीरा मिल जाए। तो हम लोग ये देख सकते हैं यहां पर कि हालांकि हम अदिति के केस में, दिति के केस में या ध्रुव महाराज के केस में देखते हैं कि उनकी बहुत भौतिक इच्छाएं थी, पर प्योर डिवोशनल सर्विस करके वो लोग शुद्ध हो गए। तो जब हम ये देखते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हालांकि मेरे में भी बहुत भौतिक इच्छाएं हैं, तो कोई बात नहीं, इसको कंटिन्यू करते हैं, साथ साथ में क्या करते हैं, भक्ति भी करते रहते हैं, भौतिक इच्छाओं को वैसे ही रखते हैं, साथ साथ में भक्ति भी चलती रहेगी, सब कुछ बढ़िया चलेगा एकदम। और ज्यादा से ज्यादा क्या है ना, कभी कभी हमारे अंदर ये फीलिंग आती है कि अभी तो एक भौतिक संसार में हम लोग हैं, इस संसार में बहुत दुख है, कलेश है ना, मैं ठीक से इंजॉय नहीं कर पा रहा, भोग नहीं पा रहा, जब मैं हेवनली प्लैनेट्स में चले जाऊंगा, स्वर्ग लोग इत्यादि में चले जाऊंगा, तब मैं बहुत ज्यादा इंजॉय कर पाऊंगा, आनंद से रह पाऊंगा, ये फीलिंग रखते हैं हम लोग अंदर ना। तभी कोई व्यक्ति मरता है तो कहते हैं जी उनका स्वर्गवास हो गया, जो ये बोलते हैं उनका स्वर्गवास हो गया, उनको श्रीमद् भागवतम पढ़ाइए, कि जो स्वर्ग में वास कर रहे हैं वो भी ठोकर खाते फिर रहे हैं, कोई वास नहीं है उनका भी अपना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर है ना, कोई भी व्यक्ति स्थिर नहीं रह पा रहा है ना, चाहे वो देवी देवता हो चाहे वो असुर हो, एक बार वो उस पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, फिर कुछ अध्याय बाद वो उस पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, पर कोई भी स्थिर नहीं है। तो चाहे कोई व्यक्ति हेवनली प्लैनेट जाने का सोचे तब भी वो व्यक्ति स्थिर नहीं रह सकता, क्यों, क्योंकि ये आनंद वहां पर भी नहीं है, ये भौतिक दुख वहां पर भी है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में बताया गया है इवन इन हेवनली प्लैनेट्स थिंग्स आर नथिंग बेटर, कि स्वर्ग लोक इत्यादि में भी जो चीजें हैं वो बेटर नहीं है, ऐसा नहीं कि वहां पर आप आराम से रह पाएंगे। भागवतम बताया गया किस प्रकार से, कृषिवत चैव निष्फलम, जैसे एक फार्मर, एक किसान होता है, एक किसान क्या करता है, एक किसान जब खेती करता है अपनी, तो खेती करके उसको फीलिंग आती है कि मैं खेती तो कर रहा हूं पर यहां पर ना फसल ठीक से उग नहीं पा रही, ये जगह ठीक नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे दूसरे स्थान पर जाना चाहिए। तो वो किसान क्या करता है, इस स्थान पर खेती रोककर दूसरे स्थान पर चले जाता है खेती करने के लिए। अब दूसरे स्थान पर क्या, फसल तो बहुत अच्छी है पर बारिश नहीं आ रही, पहले जहां पर रहता कम से कम बारिश तो आ रही थी, अब यहां पर बारिश नहीं आ रही पर फसल अच्छी है, जमीन अच्छी है, तो सोचता है कोई बात नहीं, इस स्थान को बदल कर मैं किसी और स्थान पर चले जाता हूं, जहां पर बारिश भी अच्छी हो और जहां पर फसल भी अच्छी हो। तो ऐसी जगह पे आज चले जाता है जहां पर बारिश भी अच्छी है और फसल भी अच्छी है, तो क्या है वहां पर जंगली जानवर है, वो आपकी पूरी फसल को खराब कर देते हैं। तो उसी प्रकार से हर जीव भी यही सोचता है, शायद मैं यहां पर आनंद नहीं भोग पा रहा, कुछ इससे हायर, कुछ इससे थोड़ा अच्छा करने का कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा, तब मैं आराम से चैन पूर्वक रह पाऊंगा। तो ये जो चैन पूर्वक रहना चाहते हैं जो लोग इस भौतिक संसार में, उनको श्रीमद् भागवतम जरूर पढ़नी चाहिए कि रियली अगर हम चैन पूर्वक रहना चाहते हैं तो कैसे रह सकते हैं हम चैन से। स्वर्ग लोकों में भी ये दोनों चीजें फॉलो करती हैं, स्पर्धा और असूया, मतलब कंपटीशन और एनवी, ये दोनों फॉलो करती है स्वर्ग लोक में भी। ऐसा नहीं कि स्वर्ग लोक के लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं, अगर इंजॉय कर रहे होते तो इनकी माताएं क्यों दुखी होती, क्यों सारे स्वर्ग लोक के वासी ठोकर खा रहे थे इधर उधर। श्री प्रभुपाद बता रहे हैं एक्चुअली दिस इज मेटीरियल डिजीज, ये रोग है भौतिक संसार का। ब्रह्मा जी से चींटी तक हर व्यक्ति दुखी है और हर व्यक्ति अपने अपने जगह पर संघर्ष कर रहा है बढ़ने का, खुश होने का, है ना। पर फिर भी क्या है, इस एनवियस और कंपटीशन के जगत में कोई भी व्यक्ति खुश नहीं रह पा रहा। जैसे मैं एग्जांपल दिया था स्कॉर्पियंस का, है ना, कि एक ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो दूसरा उसका पांव खींच के नीचे गिरा देता है, फिर दूसरा चढ़ने की कोशिश करता तो तीसरा गिरा देता है। अल्टीमेटली कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर पाते, कोई भी ऊपर नहीं बढ़ पाते। बट ग्रेट डिवोटीज ऑफ लॉर्ड, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन कॉम्पिटिशन। जो भगवान के ग्रेट डिवोटीज हैं, जो भगवान के अच्छे भक्त हैं, वो इस कॉम्पिटिशन के पीछे नहीं भागते, है ना। कॉम्पिटिशन कैसा, कि इस भौतिक जगत के कुछ ऑब्जेक्ट्स को, कुछ मेटेरियल ऑब्जेक्ट्स को पाना। और यही हमारे को समझना है कि जब हम इस श्लोक को सुनते हैं, अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदार दी, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी भौतिक इच्छाओं को वैसे ही मेंटेन रखें। आप देखो जैसे भी है प्रभु जी, हमारे तो भौतिक इच्छाएं है, ना? बस हम भक्ति करते रहते हैं, एक ना एक दिन तो ये ठीक हो ही जाएंगे। भक्त को हमेशा ये चेक करना चाहिए कि मैं जैसे जैसे भक्ति करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी मटेरियल डिजायर्स बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं। जो मैं पानी डाल रहा हूं, है ना, हरि नाम के माध्यम से, हरि कथा के माध्यम से, दरअसल ये पानी कहां जा रहा है, ये वीड्स में जा रहा है या मेरे भक्ति लता पौधे में जा रहा है, भक्ति लता वृक्ष बढ़ रहा है या केवल वीड्स बढ़ रही है। अगर केवल मटेरियल डिजायर्स बढ़ रहे हैं तो उस भक्त को सोचना चाहिए और क्या कुछ विकल्प निकालना चाहिए, कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए इसका। तो कुछ रीजंस, कुछ सिक्स रीजंस हमने लिखे थे कि किस प्रकार से जो मटेरियल डिजायर्स हैं, ये भौतिक इच्छाएं हैं, ये जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कॉम्पिटिशन है इस मटेरियल वर्ल्ड का, है ना, आगे बढ़ने का, भौतिक इच्छाएं हासिल करने का, तो जो भक्त हैं इस मेटल डिजायर्स के पीछे, इस मेटल ऑपुलेंस की होड़ में नहीं रहते, इनके पीछे नहीं भागते। तो सबसे पहला रीजन ये है कि भक्त समझता है कि जो भी मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो अलग अलग शेप्स में आ रही हैं, कैसे वेल्थ के रूप में, धन के रूप में, एक अच्छे परिवार के रूप में, यश के रूप में, नाम के रूप में, पावर, इन्फ्लुएंस, पोजिशन के रूप में, भक्त ये समझता है कि जितनी भी ये चीजें हैं, ये सब क्या है, टेम्परेरी है। ये जितनी चीजें हैं सब टेम्परेरी हैं, एंड और क्या, समय के साथ साथ क्या होगा, ये सारी के सारी डिस्ट्रॉय, खत्म हो जाएंगी। टाइम इज सो पावरफुल दैट इट डज नॉट स्पेयर एनीवन। समय इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली है कि किसी भी चीज को, किसी को भी स्पेयर नहीं करता, किसी को भी छोड़ता नहीं है। चाहे वो कोई एक राजा थे, महाराज धिथहरि, उन्होंने एक नीति शतक लिखा और उसमें वो प्रे कर रहे हैं टाइम को, है ना, माय ऑब्सेशन इज टू एटर्नल टाइम फैक्टर। वो भगवान समय को प्रणाम कर रहे हैं और प्रणाम करते क्या कह रहे हैं, वेयर आर दोस ग्रेट एम्पायर्स, कहां गए वो बड़े बड़े ग्रेट एम्पायर्स, इतने बड़े बड़े एम्पायर्स से कहां गए, है ना, रोमन एम्पायर, मुगल एम्पायर, ये सारे एम्पायर्स कहां गए। कह रहे हैं वेयर आर दोस ग्रेट एम्परर्स, वो बड़े बड़े राजा लोग जो थे, जो शासन करते थे इन राज्यों में, वो सब कहां गए। Where are those assembly of great learned scholars? वो जो assembly बैठती थी राजाओं के, वहां पर वो कहां पर है। Where are those people whom he conquered? चलो ठीक है, वो राजा नहीं रहे, जिनको conquer किया था, वो लोग कहां है। Where are those moon faced queens? वो जो सुंदर सुंदर रानियां थी उस राजा की, वो कहां है। Where are those princes? वो राजकुमार कहां है। Everything has been taken by time factor. समय के अनुसार सब कुछ छीन लिया गया, सब कुछ धीरे 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 करके सब कुछ छीन लिया गया। श्रीमद् भागवतम के अगर 12वां स्कंद आप पढ़ेंगे, शुरू के अध्याय में बताया गया है कैसे अलग अलग राजा आए, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल शासन किया, चले गए, अगला राजा आया, फिर अगला राजा आया, फिर अगला राजा आया, कोई भी स्थिर नहीं है व्यक्ति। तो ये समय को किस प्रकार से बताया गया है, टाइम इज कंपेयर्ड टू ए ग्रेट गैम्बलर, एक गैम्बलर के साथ कंपेयर किया गया है। एक गैम्बलर जो होता है, जब वो जुआ खेलने लगता है, उसको पता होता है वो कितना एक्सपर्ट है, उसको पता होता है जब वो खेलेगा तो वो जीतेगा जीतेगा, पर वो छोटी बाजी नहीं जीतना चाहता, वो बहुत बड़ी बाजी जीतना चाहता है। इसलिए पहली बार जब खेलने लगता है तो सामने वाला व्यक्ति बहुत कम पैसे लगाता है, तो पहली बारी में वो हार जाता है। जब दूसरी बार खेलता है तो पहले वाले को कॉन्फिडेंस होता है, यार मैं जीतता हूं, और लगाना चाहिए थोड़ा, वो और थोड़ा सा लगाता है पैसा, समय फिर हार जाता है, जीतने देता उसको, कोई बात नहीं, तो जीत, नो प्रॉब्लम, जीत, समय फिर हार जाता है। तीसरी बार फिर दोबारा वो खेलता है, हर बार जब वो सामने वाला व्यक्ति खेल रहा होता है, वो सामने वाले व्यक्ति हम ही है, हर बार जब हम खेल रहे होते हैं हम बड़ा जुआ लगाते हैं, बड़ा, और बढ़ा और बढ़ा, और समय हारता रहता है, कोई बात नहीं, जा एंजॉय कर, क्योंकि उसको पता है टाइम इज द ग्रेट गैम्बलर, उसको पता है जीतूंगा तो मैं ही आखिरी में, है ना। फिर आखिरी बाजी में क्या होता है, समय सब कुछ इकट्ठा करके ले जाता है ना। उसने जितनी मर्जी जितने मर्जी, वो नहीं कह सकता मैंने 60 साल में इतनी मेहनत की है, एक सेकंड में लेके जा रहा है यार, कुछ तो शर्म कर, वो नहीं बोल सकता ये बात। टाइम इज टाइम को कंफर्म पता है कि मैं जीतूंगा, है ना, और सब कुछ जीत जाऊंगा मैं, इसका घर, इसकी पत्नी, इसका पोजीशन, इसका फेम, सब कुछ मैं ले जाऊंगा, सब कुछ मैं जीत जाऊंगा, है ना। डेथ टेक्स टोल ऑन एवरीथिंग व्हाट वी पोसेस, सब कुछ जो भी हमारा है, सब कुछ, जो समय आएगा जब डेथ आएगी तो सब कुछ एक ही बारे में ले जाया जाएगा। इससे जो भक्त हैं, डिवोटीज हैं, इन टेम्परेरी चीजों के पीछे नहीं भागते। और इसमें स्टोरी प्रहलाद महाराज की, है ना। प्रहलाद महाराज जब नरसिंह भगवान को प्रार्थना कर रहे थे, तो प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हुए यही कह रहे थे कि ये जितने देवी देवता थे मेरे पिता से, हिरण्यकश्यप से डरते थे ना, डरते घबराते थे, और मेरे पिता हिरण्यकश्यप आपसे घबराते थे, समय से ना, टाइम से घबराते थे, काल से ना। और फिर क्या है, यू फिनिश्ड हिम इन फॉर्म ऑफ योर इटर्नल टाइम, और आपने अपने काल के रूप में उन्हें समाप्त कर दिया है। तो पहला रीजन कि भक्त लोग इस मेटीरियल ऑपुलेंस की होड़ में नहीं भागते, क्योंकि भक्तों को पता होता है कि जो भी है टेम्परेरी है, इट्स टेम्परेरी। सेकंड रीजन इज डिवोटी डज नॉट वांट टू कंपीट फॉर मटेरियल ऑपुलेंस बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स द नेचर ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। भक्त इस मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के नेचर को समझता है कि केवल ये टेम्परेरी नहीं है बट दे आर अल्टीमेट कॉज ऑफ मिजरी। ऐसा नहीं कि टेम्परेरी है ये, है ना, आज है कल नहीं रहेगा, आज जो है भी वो भी क्या होगा, दुख देके जाएगा, कॉज ऑफ मिस्ट्री है। एक्चुअली वी आर आफ्टर मिस्ट्री, है ना। हम कुछ भी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं इस भौतिक संसार में, तो हमें यही सोचना चाहिए कि हम कुछ दुख इकट्ठे कर रहे हैं ना। जैसे लोगों ने आजकल जो अभी धन इकट्ठा करके रखा है ना, उनको लग रहा था कि धन उन्हें आनंद देके जाएगा, खुशी देके जाएगा, है ना। हो सकता किसी ना किसी प्रकार से लोगों ने अपने बैंक में जमा भी कर दिया उसे, पर देखिए उन्हें दुख ही किया है, और वो बैंक में पड़ा हुआ भी दुख देगा और भविष्य में भी वो दुख ही देगा केवल, क्योंकि यही है इस भौतिक संसार में, टेम्परेरी भी है एंड सेकंड रीजन इज कॉज ऑफ मिस्री। भगवान भगवत गीता में यही कह रहे हैं, यही संस्पर्श जाप होगा, दुख योनियो एवते आद्य अंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा। ये क्या है, ये जितनी की चीजें हैं ये दुख योनियो एवते, इनका जन्म कहां से हुआ, दुख से ही हुआ, तो ये क्या देंगे हमें, केवल दुख ही देंगे। कब कब दुख देंगे, आद्य अंतवंत, बिगनिंग में, शुरुआत में भी दुख देंगे और बाद में भी दुख देंगे। ऐसा नहीं कि हमें इससे कोई खुशी मिलने वाली है, हमें लगता है कि मैं खुश हूं, है ना। इन बिगनिंग नेक्टर, कभी कभी शुरू में थोड़ा नेक्टर जैसा लगता है हमारे को, पर परिणाम में विष, अंत में क्या है, विष के समान, जहर के समान, है ना। सब मान लीजिए कोई आपको अपने घर में बुलाए फीस्ट पर या प्रसाद पर, खैर भक्त लोग तो नहीं ऐसा करेंगे, मान लीजिए बाहर मटेरियल लाइफ में कोई किसी कर्मी को फीस्ट पर बुलाए, है ना, और जो उसको सबसे अच्छी डिश लगती है वो डिश उसके लिए प्रिपेयर करे, है ना, और वो व्यक्ति उस डिश को बहुत ही चाप के साथ खाए, है ना, एक एक उसका जो एक एक टुकड़ा था उसका आनंद उठाते हुए, पर उसके अंदर जो एसेंस था, जो उसने मिला रखा था, वो जहर था, उसको आनंद तो आ रहा है शुरू शुरू में, पर परिणाम में विष, है ना, होगा कि अल्टीमेटली वो खाकर उसको मृत्यु भी मिलेगी, है ना, वो मरेगा केवल। और स्टोरी क्या है इसके पीछे, जैसे महाराज चित्रकेतु, चित्रकेतु महाराज, चित्रकेतु महाराज का सबसे बड़ा दुख था कि उनके घर में पुत्र नहीं था, उनकी कोई संतान नहीं थी, है ना। पुत्रम बिना गृहम शून्यम, पुत्र के बिना घर कैसे शून्य जैसा दिख रहा था, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पर, घर को खाली खाली, 1 करोड़ पत्नियां थी पर घर खाली लग रहा था उनको, उनकी हिम्मत ही कैसे संभाल रहे थे। 1 करोड़ पत्नियां और एक भी संतान नहीं, एक भी बच्चा नहीं। और एक बार अंगिरा ऋषि की कृपा से, अंगिरा ऋषि की कृपा से एक बार जब उनको पुत्र की प्राप्ति होती है, और अंगिरा ऋषि बताते हैं कि ये पुत्र तुम्हारे दुख का कारण होगा, है ना, पर उनको समझ नहीं आती, वो कहते चल दो तो सही पहले, किसी प्रकार से पहले कुछ मिले तो सही, पहले कुछ सुख तो मिले, है ना। और उन्होंने उस बच्चे का नाम भी यही रखा, हर्ष शोक। तो इस भौतिक संसार का हर व्यक्ति हर्ष शोक है, और इस भौतिक संसार की हर वस्तु हर्ष शोक है। शुरू शुरू में कुछ हर्ष देके जाएगी, बाद में शोक शोक शोक। तो पहला रीजन क्या था? टेम्परेरी, है ना, टेम्परेरी, किस भौतिक संसार की हर वस्तु टेम्परेरी है। और दूसरा क्या था? नेचर क्या है इसका, कि कॉज ऑफ मिजरी, केवल दुख ही लेके जाएगी। और थर्ड रीजन है, इट कॉजेस फर्दर बॉन्डेज, ऐसा नहीं कि दुख देके जाएगी, और बंधन का कारण बनेगी। इस भौतिक संसार में हमारे गिरने का कारण क्या है, आने का कारण क्या है? डिजायर टू एंजॉय सेपरेटली फ्रॉम कृष्णा, भगवान से विमुख होकर अलग होकर भोगने की इच्छा। जैसे पिंगला ने बताया है श्रीमद् भागवत में, आशा भी परमम दुखम, वो डिजायर, वो आशा है। तो ये मेटेरियल ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, हमारे को दो चीजें देखे जाते हैं, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। ये सारी भौतिक वस्तुएं जो हमें, जिसे हम भोग का कारण समझते हैं, दो चीजें देती है हमें, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। प्रारब्ध कहते हैं कैसे, मैनिफेस्ट रिएक्शंस, जो उस समय हमें रिएक्शंस मिलते हैं। और अप्रारब्ध कैसे, अनमैनिफेस्टेड रिएक्शंस। जैसे मान लीजिए कोई शराब पीता हो, शराब पीने का मैनिफेस्ट रिएक्शन, हालांकि उसको आनंद तो आ रहा है, किसी पीने वाले से पूछो सबसे ज्यादा आनंद किसमें है, उसको सारा, उसको उसके सामने पत्नी हो, उसके बच्चे हो, ऐश्वर्य हो, सब कुछ हो, एक बोतल रखी हो, चाहे वो बोतल में थोड़ी सी क्यों ना, उसको आनंद उसी में आएगा ना, उसी में उसको अपनी पत्नी का चेहरा, बच्चे का चेहरा नजर आएगा उसको, है ना। तो वो शराब है ना, वो शराब में क्या है, उसको आनंद नजर आता है ना। तो प्रारब्ध क्या है उसका, मैनिफेस्ट रिएक्शन क्या है उसका, डिजीजेस, उसको बीमारियां होंगी, पिएगा तो बीमारियां होंगी उसको, ये उसका मैनिफेस्ट रिएक्शन है। और अनमैनिफेस्ट रिएक्शन क्या है, कि जितना वो पीता रहेगा उतनी उसकी पीने की इच्छा बढ़ेगी, डिजायर टू एंजॉय विल इंक्रीज, और बढ़ती रहेगी। ऐसा नहीं कि पिया तो पी के संतुष्टि इतनी मिल गई एक बार पी के कि बस अब हो गया, है ना, ऐसा नहीं होने वाला। तो ये उसके अप्रारब्ध है, अनमैनिफेस्ट रिएक्शन है। तो जो भक्त है, भक्त समझते हैं, एक भक्त हमेशा ये ध्यान रखता है कोई भी कार्य करने से पहले, कि क्या मेरे हृदय में पहले ही भौतिक इच्छाएं कम है, कि जो मैं इस प्रकार से एक्ट कर रहा हूं कि ये और बढ़े। पहले ही अगर भक्त अपने हृदय को हमेशा टटोल के देखता है, मिलाकर देखता है अपने आप को, कि पहले ही मेरे अंदर इतनी भौतिक इच्छाएं हैं, और अगर मैं इस प्रकार से एक्ट करूंगा तो ये भौतिक इच्छाएं और बढ़ेंगी। प्रहलाद महाराज से जब नरसिंह भगवान ने पूछा, बोला उनको कि बोलो क्या चाहिए, प्रलोभन दिया, बोलो क्या चाहिए, तो प्रहलाद महाराज ने कुछ मांगा नहीं। प्रहलाद महाराज ने नरसिंह भगवान को यह याद दिलाया कि आपको पता नहीं कि मेरी उत्पत्ति कैसे हुई है, मेरा जो जन्म हुआ है एक आसुरी परिवार में हुआ है, और आसुरी परिवार में जन्म लेने के कारण पहले ही मुझ में इतने सारे रोग हैं, इतने सारे दोष हैं, क्यों आप मुझे और कुछ भौतिक देना चाहते हैं कि मेरे दुख कलेश बढ़े। तो इसके प्रहलाद महाराज ने रिजेक्ट कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग। जस्ट इमेजिन कीजिए, आप एक डॉक्टर के पास जाए, आपको बुखार हो और आपको कफ और कोल्ड हो, और डॉक्टर आपसे पूछे बेटे कौन सी आइसक्रीम खानी है, है ना, कौन सी कोल्ड ड्रिंक लोगे आप, है ना, ऐसा नहीं, क्योंकि डॉक्टर को पता है जितना ये कोल्ड ड्रिंक लेगा, जितना ये और लेगा, उतना इसकी बीमारी बढ़ेगी। तो एक्चुअली वो डॉक्टर नहीं है, जो पेशेंट उसके पास गया और पूछ रहा है बेटे कौन सी आइसक्रीम लोगे आप, उसको फीवर है, बीमारी है ऑलरेडी पहले से। तो एक भक्त हमेशा ये ध्यान रखता है कि ऑलरेडी मुझ में बहुत सारे डिजीजेस हैं, बीमारी है ना, और तो मैं बढ़ाऊं। तो पहला रीजन था किसी सब टेम्परेरी है, सेकंड रीजन था टेम्परेरी है, टेम्परेरी होने के साथ साथ क्या कॉज ऑफ सफरिंग है, कॉज ऑफ मिजरीज है, और थर्ड था कि मिजरीज भी है और फर्दर बॉन्डेज भी क्रिएट कर रहा है, और फोर्थ रीजन क्या है कि ये जो मेटीरियल बॉन्डेज है, ये जो बंधन है, ये क्या करता है, हमें रोकता है, हर्डल है हमारे लिए, सबसे बड़ी बाधा है किसमें, फॉर कॉलिंग आउट फॉर कृष्णा, भगवान को पुकारने में, भगवान को शरणागत करने में सबसे बड़ी बाधा यही भौतिक चीजें हैं। इसलिए ठाकुर भक्ति विनोद ने कहा है, जड़ विद्या माया वैभव आमार भजने बाधा, ये जो भी चीजें हैं जड़ विद्या, है ना, नेम फेम, जो भी मेटेरियल ऑपुलेंस है, ये सब क्या है, ऑब्स्टेकल्स है, हर्डल है, किस चीज में, भजने, जो हमारा भजन है, जो हमारा चैंटिंग है, जो हमारे डिवोशनल सर्विस में बाधाएं हैं, अगर ये खत्म नहीं होंगी तो हमारी भक्ति ठीक से नहीं चल सकती, है ना। और कुंती महारानी ने भी यही प्रार्थना किया, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी, बर्थ वेल्थ स्कॉलरशिप लर्निंग और बॉडी फिजिक, है ना, जब तक ये किसी में होगा तब तक उस व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है भगवान को पुकारना, भगवान को शरणागत करना। one is not able to call out for Krishna. व्यक्ति के लिए बुलाना भगवान को बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये क्या है, सबसे बड़ा impediment है। और इसमें ये सबसे हम किस से सीख सकते हैं, हम लोग श्रीमद् भागवत में जो डिस्क्रिप्शन आता है नल कुबेर और मनी ग्रीव का, नल कुबेर और मनी ग्रीव के पास सब कुछ था। सबसे पहले वो सन ऑफ कुबेर थे, है ना, कुबेर के पुत्र थे। कुबेर के पुत्र होने के कारण नेचुरली वो बहुत, कुबेर बहुत पायस है और नेचुरली उनको पायस होना चाहिए था, है ना। और सेकंड क्या है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, रुद्रस्य अनुचरयो, दे वर फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड शिवा, वो शिव जी के फॉलोअर्स थे। उसके बाद भी क्या उन्होंने क्या किया, कैलाश पर मंदाकिनी नदी पे भोग रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं वुमेन्स के साथ, लिकर, वेल्थ, क्यों, ये सारे ऑपुलेंसेस थे उनके पास। और ये जितने भी ऑपुलेंसेस थे ये रोक रहे थे उनको भगवान को शरणागत होने के लिए। तो दरअसल नारद मुनि ने क्या किया, उस पर कृपा की नल कुबेर मनी ग्रीव पे, और ये ऑपुलेंसेस छीन लिए उनसे। जैसे ये ऑपुलेंस छीने नल कुबेर मनी ग्रीव से, अब उनको रियलाइज हुआ कि उनका एक्चुअली ड्यूटी उनकी क्या थी, क्योंकि क्या थे, वो ब्लाइंडेड थे, अंधे थे, इन मेटल ऑपुलेंस के कारण वो अंधे हो चुके थे। तो नारद मुनि ने दर्शन से कुछ छीना नहीं, नारद मुनि ने उनको दिया, क्या दी, एक दिव्य नेत्र दिए, चक्षु प्रदान की उनको, जिससे वो देख सके कि एक्चुअली उनकी ड्यूटी क्या है, उनकी जिम्मेदारी क्या है, उनका कर्तव्य क्या है। तो ये फोर रीजन थे। फिफ्थ रीजन है कि देखिए, कोई भी कॉम्पिटिशन है, कोई भी भौतिक इच्छाएं हैं, है ना, ऐसा नहीं कि ये भौतिक इच्छाएं हम लोग आराम से पूरी कर सकते हैं। नेचुरली ये भौतिक इच्छाएं पूरी करने के लिए किसी ना किसी का गला तो दबाना पड़ेगा, किसी ना किसी से एनवी करनी पड़ेगी, द्वेष करना पड़ेगा। जो हम चाहते हैं ऑलरेडी कोई व्यक्ति कर रहा है, तो जैसे हम उसको देखेंगे हमारे अंदर ये भावना नहीं आएगी कि बहुत अच्छा कर रहा है, कितना अच्छा है ये, है ना, हमारे अंदर एक एनवी फीलिंग आएगी, द्वेष आएगा हमारे अंदर, किस प्रकार से इसे छीनूं, किस प्रकार से ऐसे एक्ट करूं कि ये जो व्यक्ति भोग रहा है, ये सारा भोग मेरे पास आ जाए। कोई भी कॉम्पिटिशन विदाउट एनवी के नहीं किया जा सकता। और ये जो एनवी है, ये क्या कारण है, हमारे डाउनफॉल का कारण है, हमारे पतन का कारण है। एक बार श्रील प्रभुपाद एक कमरे में गिरिराज महाराज और कुछ भक्तों के साथ बैठे थे, तो एक भक्त ने प्रश्न पूछा प्रभुपाद से, प्रभुपाद इज इट ओके टू एनवी अदर डिवोटीज, क्या ये ठीक है दूसरे भक्तों से द्वेष करना। श्री प्रभुपाद ने गिरिराज महाराज की तरफ देखा, प्रभुपाद चाहते थे कि गिरिराज महाराज इस चीज का उत्तर दे, और गिरिराज महाराज ने क्या बोला, एक्चुअली कृष्णा इज अनलिमिटेड, भगवान जो है अनलिमिटेड है, एंड सर्विस टू कृष्णा इज ऑल्सो अनलिमिटेड, और जो भगवान की सेवा भी है वो भी क्या है, अनलिमिटेड है, ऐसा नहीं कि कोई कमी है, है ना, ऐसा नहीं कि भगवान के गोलोक वृंदावन में रिसेशन चल रहा है, ऐसा नहीं कि वहां पर भक्त लोग घबराएंगे कि भैया भौतिक संसार में तो नौकरी मिलनी थी, पता नहीं वहां पर भी वैकेंसी होगी नहीं होगी, नहीं, जितने लोग हैं इस भौतिक संसार में इतनी वैकेंसीज हैं, जितने लोग हैं उतनी सर्विसेज हैं, कोई घबराने की बात नहीं है, किसी की कमी नहीं है। सो गिरिराज महाराज ने क्या बोला, कृष्णा इज अनलिमिटेड एंड सर्विस टू कृष्णा इज ऑल्सो अनलिमिटेड, सो वाई टू एनवी डिवोटीज, तो भक्तों से क्यों द्वेष किया जाए जब सब कुछ अनलिमिटेड ही है। और श्री प्रभुपाद एक जगह क्या बताया, व्हाट इज एनवी, दरअसल ये एनवी है क्या, प्रभुपाद बताया एनवी मींस नॉट लाइकिंग समवन, कि किसी को पसंद ना करना, ये मुझे पसंद नहीं है, दिस इज एनवी, ये द्वेष है। दिस नॉट लाइकिंग समवन शुड बी यूज्ड अगेंस्ट डीमंस, प्रभुपाद ने बोला ये असुरों के प्रति या उन लोगों के प्रति यूज करना चाहिए अपने एनवी को जो भक्तों से द्वेष कर रहे हैं, उनके प्रति भक्तों से द्वेष करने में नहीं से लगाना। एक बार अब्राहम लिंकन से पूछा किसी ने कि why you don't kill your enemy, आप अपने एनिमीज को मारते क्यों नहीं है, उसने क्या उत्तर दिया, by making them my friends I am killing my enemies, उनको अपना मित्र बनाकर मैं उन्हें मार ही तो रहा हूं। तो दरअसल एक भक्त का कभी यह भाव नहीं होता कि मैं किससे कुछ निकाल लूं, किससे कुछ निचोड़ लूं, है ना, किसी प्रकार से किसी की कुछ सेवा ले लूं। एक भक्त का ये हमेशा भाव ही होता है कि सर्विसेज अनलिमिटेड है भगवान की सेवा, है ना, तो क्यों मैं एनवी करके किसी भक्त से अपना भी नुकसान करूं और उसका भी नुकसान करूं। इसलिए जो भक्त है, भक्त अजात शत्रुवा होते हैं, किसी के प्रति शत्रु नहीं होते। भक्तों से लोग शत्रु करते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि भक्तों से लोग शत्रु नहीं करते, चाहे वो युधिष्ठिर महाराज थे, चाहे वो श्रील प्रभुपाद थे, चाहे वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद थे, लोग उनसे ईर्ष्या द्वेष करते थे,
पर ये लोग कभी किसी ईर्षा द्वेष नहीं करते थे. एंड सिक्स्थ रीजन इज डिवोटी इज नॉट अटैच टू कॉम्पिटिशन और नॉट कॉम्पिटिशन. कि भक्त कभी कॉम्पिटिशन और नॉट कॉम्पिटिशन से अटैच ही नहीं होता, क्योंकि जो भी उसको भगवान, जो भी भगवान का आदेश है, जो भी भगवान की इंस्ट्रक्शंस है, वो अपना पूरा जीवन निकालता है भगवान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में. तो उसको कॉम्पिटिशन और नॉन कॉम्पिटिशन से कोई मतलब नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अर्जुन थे, अर्जुन बैटल फील्ड पे क्या कह रहे थे युद्ध स्थली पे, कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे कोई कॉम्पिटिशन नहीं दिया. ही वॉज नॉट अटैच टू कॉम्पिटिशन. भगवान ने क्या बोला, लड़ना पड़ेगा, कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा. तो ऐसा नहीं कि वो अपनी बात से असक्त था. अर्जुन अपनी बात से असक्त थे, उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं तो नहीं करूंगा जितना मर्जी बोलते रहो. नहीं, वो कंपटीशन से भी असक्त नहीं थे और नॉट कंपटीशन से भी असक्त नहीं थे. वो असक्त थे भगवान के आदेशों का पालन करने में. और सेकंड उदाहरण पृथु महाराज का. जब इंद्र बार बार पृथु महाराज के सोवे अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुराया जा रहा था, पृथु महाराज को बहुत क्रोध आया था. और पृथु महाराज ही वॉज अटैच टू कॉम्पिटिशन. अर्जुन शुरू में ही वॉज अटैच टू, he was not attached to competition. और पृथु महाराज शुरू में he was attached to competition. नहीं मैं मारूंगा इसको, ये बार बार घोड़ा चुरा रहा है, यही रीजन है, यही सारी प्रॉब्लम का जड़ है, इसको मैं मारूंगा. ब्रह्मा जी ने बोला छोड़ दो, भूल जाओ, इसी से भगवान की कृपा प्राप्त होगी, भूल जाओ इसको. और जब ये बोला गया he was not attached to it, छोड़ दिया. तो एक भक्त है ऐसा नहीं कि वो इस opulences से attached, इससे अटैच रहता है या नहीं अटैच रहता. नहीं, एक भक्त अटैच रहता है इंस्ट्रक्शन से. भगवान क्या कह रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, उसे पालन करना. अ डिवोटी डज नॉट बॉदर हिमसेल्फ विद कंपटीशन और नॉट कंपटीशन. व्हाट मैटर्स हिम इज टू इज दैट ही इज अटैच्ड टू इंस्ट्रक्शंस. वो उसके लिए सबसे बड़ा मैटर क्या करता है कि वो भगवान के आदेश से, इंस्ट्रक्शन से, भगवान के उपदेशों से असक्त है. एक बार सुन रहे राधा स्वामी महाराज बता रहे थे अपने बुक डिस्ट्रीब्यूशन के एक लेक्चर में, महाराज बोल रहे थे कि हर भक्त को, हमारे मंदिर को हजारों लाखों भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए. किस लिए? ताकि हजारों लाखों भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करके हमारे मंदिर का नाम सबसे पहले आ जाए. उससे क्या होगा, जितने मंदिर हैं उन सबके अंदर उत्साह बढ़ेगा कि हमें भी ज्यादा भगवत गीता करनी है ना. और एक दिन ऐसा आना चाहिए कि हमारा नाम उस लिस्ट में नजर भी ना आए. तो ये जो कंपटीशन है, ये कंपटीशन बहुत प्योर कंपटीशन है. ऐसा नहीं किसी को डिफीट करने के लिए, ऐसा नहीं कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना इस कॉन्शियसनेस के साथ कि हमें नंबर वन आना है. ये नंबर वन का कंपटीशन कितने लंबे समय चलेगा, कितने लंबे समय चलेगा नंबर वन कंपटीशन? हो सकता है कोई और मंदिर आगे प्रोग्रेस कर रहे, हो सकता कोई और आगे बढ़ जाए, है ना. पर रियल कॉम्पिटिशन क्या है कि इस प्रकार का, जैसे भगवान की कृष्ण लीला में जब सब लोग देखते थे कि कृष्ण गाय चराते हुए बहुत दूर चले गए हैं, तो जितने भी ग्वाल बाल थे अहम पूर्वम कह के भगवान की तरफ दौड़ते थे कि पहले मैं छूऊंगा भगवान को. दूसरा कहता था ऐसे कैसे, पहले मैं छूऊंगा भगवान को. तीसरा कहता था ऐसे कैसे, पहले मैं छूऊंगा भगवान को. और हर कोई तेजी से भागता था भगवान की तरफ, पहले मैं छूऊंगा कृष्ण को, पहले मैं छूऊंगा. तो उस कॉम्पिटिशन का पर्पज ये नहीं था कि मैं जीतूंगा, उस कॉम्पिटिशन का पर्पज ये था इस प्रकार से एक्ट करना कि जो भक्त निरुत्साहित भी हैं उनके अंदर भी उत्साह आए सेवा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए. तो जो भी भक्त हैं इस मेटल वर्ल्ड के ऑपुलेंस से इतना अटैच क्यों नहीं होते, तो सिक्स रीजन हमने डिस्कस किए. नंबर वन कि जो भी है इट्स टेम्परेरी. जो भी ऑपुलेंसेस हम देख रहे हैं, जो भी डिजायर्स हैं, जो भी हम पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स टेम्परेरी. टेम्परेरी होने के साथ साथ क्या है, इट्स कॉज ऑफ मिसरी, ये दुख का कारण है. थर्ड इट्स ये कॉज ऑफ मिसरी भी है और साथ में इट इज कॉज ऑफ फर्दर बॉन्डेज, ये बंधन का कारण है. फोर्थ इज ये बंधन का कारण है और साथ में क्या है, हर्डल है, एक बाधा है कि इसी कारण से मैं कृष्ण को पुकार नहीं पा रहा, इसी कारण से मैं भगवान को शरणागत नहीं कर पा रहा. और यही क्या कर रहा है, हमारे अंदर एक एनवी को क्रिएट कर रहा है. तो एक जो भक्त है वो किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिशन और नॉट कॉम्पिटिशन से अटैच नहीं होता. He is attached to Krishna. He is attached to instructions of Krishna. तो ये जो श्लोक है, अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदार दी, ये हम सुनते हैं हर बार, पर इसको इस प्रकार से डायरेक्शन में जाते हैं कि जो भी मेरी मटेरियल डिजायर्स है इसको मैं मेंटेन रखूंगा और साथ साथ में चैंटिंग भी करता रहूंगा, हेयरिंग भी करता रहूंगा, रीडिंग भी करता रहूंगा और सब कुछ ऐसा चलता रहेगा. हालांकि शास्त्रों में ये उदाहरण है कि अगर हम भक्ति का कड़े तरीके से पालन करेंगे तो ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी, बट हमारे लिए इस अनर्थों से, इन अनर्थों से भी हमें सेपरेटली फाइट करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। जैसे श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया भक्ति में आगे बढ़ने के लिए 4 नियम का पालन करना है और 16 माला का जप करना है। प्रभुपाद केवल यह भी बता सकते थे कि 16 माला का जप करना है, केवल 16 माला का जप करो बाकी सब अपने आप ही हो जाएगा, नहीं, 16 माला का जप भी करना है, साथ साथ में 4 नियम का पालन करने के लिए भी हमें मेहनत करनी है, साथ में एफर्ट्स डालने। ऐसा नहीं होगा एक दिन हम रात को सोए और सुबह उठे हम लोग तो हमारे गले में अचानक से हमने देखा कंठी माला मिले थे गले में, और जो भी हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं थी सब खत्म हो गए ना, यदा अवधि मम चित्त कृष्ण पदार बंदे हो नव नव धाम अंतमासी, है ना, जितनी भौतिक इच्छाएं थी खत्म हो गई, अब कहीं हमारा मन भटक नहीं रहा, ऐसा नहीं होगा। जो भी भक्त 4 नियम का पालन कर रहे हैं या कर चुके हैं या करने का प्रयास कर रहे हैं उनको पता होगा कि कितना स्ट्रगल करता है, इसके लिए भी सेपरेटली एफर्ट करने पड़ते हैं। या फिर अगर कोई भक्त अपने जीवन में वैष्णवास की क्वालिटीज को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, तो भी उसके लिए व्यक्ति को वो भक्ति भी कर रहे हैं साथ में और साथ में वैष्णव क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए भी अलग से मेहनत करनी पड़ती है ना। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन हम सोए रात को और जब सुबह हम उठे तो बहुत हम्बल सी फीलिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कहां जाऊं, क्या करूं, किसको शरणागत करूं, कहां है कृष्ण, कहां है श्रीमती राधा रानी, कहां है श्रील प्रभुपाद, कहां है पुस्तकें, कैसे बांटने जाऊं, ऐसा नहीं होने वाला, अलग से प्रयास करना पड़ेगा, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। उसी प्रकार से जब हम सुनते हैं कि किसी भी प्रकार से हम भक्ति करें कामना के साथ या मोक्ष कामना के साथ या सकाम भक्ति, चाहे हम कुछ भी करें ना, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे को एक लाइसेंस मिल गया है कि भौतिक इच्छाएं मेंटेन रखो और भक्ति करते रहो, नहीं, हमें अलग से भी प्रयास करना है जानते हुए कि सब कुछ टेम्परेरी है ना, ये मुझे दुख ही देने वाले हैं और मेरे लिए बंधन का कारण है सिर्फ, है ना, ये मुझे और बांधेंगे। तो इन चीजों को दिमाग में रख के जो भी मेटेरियल ऑब्जेक्ट, जो भी मेटेरियल डिजायर, जो भी मेटेरियल हमारी सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा है, हमें उसे खत्म करना होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की।